لیکن جو لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہ بھاگنے. اب امیجن کریں، کوئی جھلکی ٹیلی ویژن پہ آپ نے زلزلے کی دیکھی ہو، سونامی کی دیکھی ہو، کٹرینا کی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی ایسی آسمانی آفت جب آتی ہے تو اس وقت لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس کے ترجمے کے اوپر صرف غور کر لیں گے نا تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی ایک خصوصی توجہ چاہیے. پھر پڑھوں گی شروع سے. اتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا یعنی وہ جھٹکے آنے لگے تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین سے رہ رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. پھر کیا بولے؟ سوچی ان کے جملے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا وار تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ انا کنا غافلین، ہم بھولے تھے، غافل تھے، ہمیں پتا نہیں، ہم ظالم تھے. یعنی سب پتا تھا کہ کیسے جینا ہے لیکن ہم اپنی مرضیوں سے جانتے تھے. پھر کیا وہ عذاب اور قریب آیا اور قریب آیا. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حسیدا خامدین، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا اور زندگی کا ایک شرارہ تک انہیں نہ رہا. ان کی زندگیوں کے چراغ بجھ گئے. کتنا بولتے تھے اللہ کے خلاف، کتنا بولتے تھے مولویوں کے خلاف، اور کتنا بولتے تھے اسلام کے خلاف، آج بجھ کر رہ گئے. آج بجھ کر رہ گئے. سوچنے کی بات ہے. ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں ہم عیش میں تو نہیں پڑے ہوئے. عیش سے مراد کیا کہ بے مقصد زندگی، بے کار زندگی. ہر دن ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک صفحہ مٹا دیا جاتا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے ہیں. اس احساس کے ساتھ جینا اور اس کے بغیر جینا، یہ دو مختلف جینے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور کر دیں. اسی لیے بگلی آیات میں مقصد زندگی، What is the purpose of life؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس کر لیتے، یعنی کیا ضرورت ہی اتنی بڑی دنیا بنانے کی. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بنایا کرتے ہو. آپ دیکھیے کہ کیسی باتیں تھیں. آج بھی اگر آپ اس آیت پہ غور کر کے دیکھیں نا تو یہاں یہ جو لفظ ہے نا فید مغو، دماغ لفظ اسی سے، دماغ برین. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ اپنا برین یوز کرو، اور بندے کی کوششیں کس مقصد کے لیے لگے کہ باطل پر حق کی چوٹ. دنیا میں جہاں آپ کو باطل دکھے، غلط چیزیں، غلط رسمیں، غلط طریقے ہیں، اللہ کی نافرمانی، وہاں جا کے حق بات کریں، اور حق کو ایسے خوبصورت طریقے سے رکھیں کہ باطل کا دماغ نکل جائے، بھیجا نکال دو اس باطل کا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہی کام دے کے بھیجا ہے. کنتم خیر امتن، آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی مسلمانوں کے خلاف لوگوں نے باتیں کی، عورتوں کے بارے میں باتیں کی، لیکن مسلمان غصہ نہیں کرتے بلکہ وہ دلیل کے ساتھ جواب دیتے تھے. ایک موقع پہ ایک شخص نے کسی مسلمان سکالر سے کہا، اچھا جی وہ عائشہ جس پر الزام لگا تھا، یعنی حضرت عائشہ کی، کہا تمہارا نبی وہ جس کی بیوی پہ زنا کا الزام لگا تھا، نعوذ باللہ. اب آپ سوچیے، ہم ہوتے تو کام چاہتے، غصہ کرتے، مکہ مارتے، تھپڑ، یہ کیا کیا، گستاخی کی. نہیں، ٹھنڈا دماغ، ٹھنڈا رکھیے. ہاں جی، بڑا خوبصورت جو کہنے کے، ہاں واقعی دنیا کی دو بڑی خوبصورت عورتوں پہ الزام لگا، ایک کو اللہ نے بیٹا عطا کر دیا بی بی مریم، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں بے گناہی کی آیتیں اتار دی. آیت برات سورت نور کی آیتوں کی طرف اشارہ تھا، یعنی اس کو چپ کرا دیا کہ اگر عائشہ پہ الزام لگا تو بی بی مریم پہ بھی تو لگا تھا جس کے تم پیروکار ہو. آج اس دلیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق باطل رہیں، زندگی کو مقصد کے ساتھ رہیں گے. اور مقصد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں کرو اس کو آخرت کی نظر سے دیکھو، جو کر رہے ہو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، اور اس طرح سے انسان اپنے آپ میں کر کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آسانیاں کریں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں نہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے پھونک پھیرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے. इन लोगों के बनाए हुए दुनियावी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हों। अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। सच है ना? एक गाड़ी में दो ड्राइवर बिठा दीजिए, एक खाना पकता और दो लोग चमचे मारने लग जाए तो इंतजाम बिगड़ जाए। इतनी बड़ी दुनिया जिसमें आप देखिए कोऑर्डिनेशन कितनी है। बस अगर आप देखिए आसमान का खुदा और होता, जमीन का नीचे का और होता। अब मिसाल लेते हैं बादलों की। बादल बनते का है, नीचे जमीन से पानी जाता है। अब जमीनी खुदा जो होता उसके अंडर में समंदर था, ठीक है, फिर वहां से वेपोरेशन होती, बखार आ जाते तो ऊपर आसमान पे जाके क्लाउड बनते हैं। दोनों के आपस में लड़ाई होती, कभी दुनिया को बारिश मिलती, वो तो लड़ लड़ के रह जाते। दोनों लड़ते, दोनों को कुछ ना मिलता। तो अल्लाह ताला कहते हैं नबीन से कहो, लो अपनी दलील, ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसीलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हाईलाइट कर रहे, अक्सरियत मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह हमें उनमें ना करे। हमने आपसे पहले जो रसूल भी भेजे उनको यही वही कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम मेरी बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह। वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई, इसके हुजूर भड़कर नहीं बोलते और बस इसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ इनके सामने है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते सिवाय इसके जिनके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। सोचिए, क्या मैं अल्लाह से डरती हूँ? क्या मैं भी फरिश्तों की तरह खौफजदा? अब देखिए, ना फरिश्तों के लिए कब्र है, ना हशर है, ना जहन्नम ना जन्नत, लेकिन वो अल्लाह की शान जानते हैं ना, तो अल्लाह की मेजेस्टी के आगे कांपते हैं। हमारा हाल ये कि हमें पता है कि जन्नत या जहन्नम है, हमें पता है पुल सरात आने वाला है, हमें पता है मैदान हशर में मारे जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं खौफजदा, क्योंकि अल्लाह की कदर नहीं है। हिसाब किताब की बात नहीं होती। कुछ लोग बड़े लोग होते हैं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछना होता, लेकिन उनका एक रोब होता है दिलों पे, उनको देखकर लोग एकदम सीधे होने लगते हैं। क्या अल्लाह का रोब है हमारे दिलों में? क्यों जन्नत जहन्नम सब जानने के बावजूद भी मैं नहीं अल्लाह के बारे में सोचती, उसकी नाफरमानी से नहीं रुकती? वजह सिर्फ पीछे ये कि अल्लाह की वो कदर नहीं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिल में अपनी कदर बढ़ा दे और हम तुझे वाकई बड़ा समझ सकें। फरमा, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया? गौर नहीं करते कि ये सब जमीन और आसमान तो पहले बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। आज देखिए साइंस ये चीज साबित की है जो 1400 साल पहले कुरान में थी, कि हर बड़ी चीज पानी से पैदा की गई। और आप नोट कीजिए, पानी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐसा सोर्स है कि जिसके साथ जिंदगी होती है। इंसान खाए बगैर जी लेता है, लेकिन पिए बगैर जीना मुश्किल होता है। फरमाए, क्या वो हमारी इस खल्लाकी को नहीं मानते? और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इनको लेकर ढुलक न जाए, और इसमें कुशादा राहें बना दी शायद के लोग अपना रास्ता मालूम करें, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, मगर ये है कि कायनात की निशानियों तरफ तवज्जो ही नहीं करते। और वो अल्लाह ही तो है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक फलक में तैर रहे हैं। वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द, और नबी हमेशा की तो हमने आपसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी। कोई अगर हमेशा रहता तो अल्लाह का नबी रहता। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक को जाना है, इसीलिए फरमा दिया फाइ मित तब फहुमुल खालिदून, अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? यानी ये कौन थे जो आपके मरने की दुआएं कर रहे थे? नाउज़ुबिल्लाह, कहते थे इन्होंने हमारा जीना दोबर किया हुआ, मुश्किल है, हर वक्त बातें बातें बातें, चलो कोई नहीं, जब इनको दुनिया से जाना है फिर हम इसके बाद अपनी मस्तियां करेंगे। तो अल्लाह कहते हैं आपकी मौत के रास्ते देखने वाले, क्या इनको खुद नहीं पता कि इनको भी मरना है? हर एक को मरना है। और बात यह कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हाईलाइट कीजिएगा, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। दुनिया में क्या हो रहा है? वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ पलटना है। ये है जिंदगी। देखिए, जिसको ये यकीन आ जाए ना कि मैंने मौत का जायका चखना है, फिर वो दुनिया में ना फरमानियों के जायके नहीं चखेगा, हराम के जायके नहीं चखेगा, मुश्तबे चीजों के जायके नहीं चखेगा, एक जायका चखेगा, कुरान का जायका, जिसमें अल्लाह की इताअत का रंग है, जिसमें सिफत अल्लाह का रंग है, जिसमें हकीकत ला का बनने का रंग है। और जितना जिंदगी में कुरान का मजा चखा होगा ना, उतनी मौत की कड़वाहट कम होगी। और जितनी जिंदगी गुनाहों की कड़वाहट के साथ गुजरी होगी, मौत का जायका कड़वा होगा। इलैहा तुरजऊन। आना तो हमारी तरफ, कब तक खैर बनाओगे, कब तक नो कहोगे, कब तक सर फेरोगे? जिस दिन हमारे सामने आओगे लग बता जाएगा। और ये भी बता दिया कि अच्छे और बुरे हालात दोनों इम्तिहान के पर्चे, जैसे उर्दू इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इस तरह दुख सुख पढ़ते हैं। दुख में भी आजमाइश है, सुख में भी आजमाइश है। दुख में पास हो जाते हो, सुखों में क्या हो जाता है? फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानियां करते हो? फरमाइए, मुनकरीने हक जब तुम्हें देख लेते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकर है। याद रखिए, दीन के लिए मजाक उड़वाना, यानी आप दीन पे अमल करेंगे और मजाक उठेगा। आप कोई भी सोच ले, चलिए आम बातें तो दाढ़ी नहीं है ना, आपके मर्द ने दाढ़ी रखी, लोगों ने मजाक किया, ये क्या पहना हुआ है, ये क्या बिब लगाया हुआ है। आपने हिजाब पहन लिया, लोगों ने मजाक उड़ा लिया। आप कुछ वक्त से उठे, आपने कहा नहीं मुझे तो नमाज पढ़नी, वो कहते ये क्या नमाज है, उठो नमाज है। अब ये दीन के लिए जो मजाक उड़ाने हैं ना, लिख लीजिए, ये इज्जत का सदका है। हम माल सदके में देते हैं ना, कपड़े भी देते हैं, खाना भी देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अपनी इज्जत का सदका करो, स्टेटस का सदका करो। और ये ऐसे टेस्ट है, लिटमस टेस्ट होते हैं ना, जब साइंस में आप करते हैं, जब तक दीन की बात करने पर, अल्लाह के दीन पे, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने पर रिएक्शन नहीं शो हो, तो समझिए वो हक नहीं है। हक की पहचान ही है सच की पहचान, के जो ही आप उसको अपनाएंगे आपको लोग बुरा भला कहेंगे। आप नमाज के साथ तस्बीह नमाज जो, तस्बीह नमाज के साथ आप सलात व तौबा पढ़ें, रात पूरी सो नफिल पढ़ें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेंगे बहुत अच्छा काम करते हो बेटा। जो ही आप अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह के रंग में रंगेंगे, 10 लोग पूछेंगे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, सोच लो, घबराहट होगी, दिमाग चला जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, तुम्हें आईनेस में रोक लेंगे, ये होगा वो होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो होगा, और नबी का हुआ, इसलिए किसी और की क्या बड़ी बात है। इसलिए फरमा दिया, क्या कहते थे अल्लाह के नबी को देखकर, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र करता है, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं, ये रहमान के जिक्र से भी मुनकर है। बात ये खुलिकल इंसान मिन अजल, इंसान बहुत जल्दबाज मखलूक है, इसीलिए तो आजीला चाहता है ना, पीछे सुन चुके हैं सूरत बनी इसराइल में, आजीला दुनिया चाहता है। रिवायत में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना, अभी उनकी रूह जो थी वो उनकी टांगों में, कि उन्होंने उठ के बैठना शुरू किया, कि इंसान दुनिया के फायदे जल्द लेना चाहता है। अल्लाह कहते हैं सऊरी को मायाती फला तस्ताजिलून, अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूँ, मुझसे जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी कब पूरी होगी, अगर तुम सच्चे हो, काश इन काफिरों को इस वक्त का कुछ इल्म होता, जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे ना अपनी पीठें। सोचिए मुंह पे आग पड़ेगी ना तो पलटेंगे, पीछे की तरफ करेंगे तो आग पीठ पे आग लग जाएगी, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी, वो बला अचानक आएगी और इन्हें इस तरह यकलत दबोच लेगी कि ये ना इसको दफा कर सकेंगे और ना इनको लम्हा भर मोहलत ही मिल सकेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों को उड़ाया जा चुका, मगर इनका मजाक उड़ाने वाले इसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। देखिए कभी अल्लाह ना करे किसी को आग लगे, जब आग लगती है ना इंसान चेहरा बचाते पीछे जाता है, पीछे से दूसरा, सुनते ही रहते होंगे आप इस किस्म की खबरें, आग लग गई मर गए, आग लग गई ये हुआ। आप देखिए कि दुनिया में आग से हम कितना डरते हैं, आप अक्सर कीजिए, अभी भी आपके सामने एग्जिट लिखा हुआ है, इधर भी लगा होगा, इस बिल्डिंग की मेरा लेकर 20, 30, 40 रिक्वायरमेंट्स होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप इसको एक स्कूल के तौर पर यूज करते हैं, राइट? और अक्सर के पीछे वजह के, इस रूम की कैपेसिटी लिखी होगी, वजह के इन केस ऑफ फायर, अक्सर आप देखें जहाज में बैठते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ, इंसान के लाशौर में आग का खौफ है, तो क्या जहन्नम की आग का खौफ नहीं है? अल्लाह मिनन्नार, अल्लाह ताला हम सबको आग के अजाब से बचा दे। ए नबी इनसे कहो, कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो, मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत करें, वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं ना हमारी हिताई इनको हासिल है। असल बात है कि इन लोगों को और इनके आबा अजदाद को हम जिंदगी का सरो सामान दिए चले गए, यहाँ तक कि इनको दिल लग गए। हाईलाइट करें ये वजह, जब दो चार नस्लों में दौलत चलती रहती है ना तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, फिर अल्लाह को ना भूल कर अपने आप को बड़ा समझता है, मगर क्या इनको नजर नहीं आता कि हम जमीन को घटाते ही चले जा रहे हैं? क्या फिर ये गालिब आ जाएंगे, इनसे कह दो, मैं तो वही की बिना पर तुमको आगाह कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को सुना नहीं करते जब तक कि इनको खबरदार कर दिया जाए। यहां देखिए बड़ी अहम आयत है, ये सूरह रात में भी आती है, इसी से मिलती हुई, कि अन्ननात अलअर्द ननकुसहा मिन अतराफिया। जमीन को घटाने से क्या मतलब है? एक तो इसको अगर साइंस की रोशनी में ले लें तो कहते हैं कि दिन ब दिन जमीन पे पानी भरता जा रहा है और खुश्की कम हो रही है। किसने बताया 1400 साल पहले? जिसने इस दुनिया को बनाया। फिर इसी तरह जमीन को घटाने का एक और मफहूम लिया गया कि कुफर कम हो रहा है और इस्लाम आ रहा है। और ये कब हुआ था? जब अल्लाह के नबी के बाद सहाबा गलबा था कि दिन ब दिन दुनिया में इस्लाम फैलता आ रहा था, वो भी था। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सब के साथ यही हो रहा है। वक्त के साथ साथ हमारी हर चीज घट रही है। हुस्न घट जाता है, सेहत घट जाती है, कोई चीज पहन ले तो सजती नहीं है, जेवर पहन ले तो कानों में दर्द है, बुंदे हैं। और फिर एक वो वक्त आती है कि सुनने के लिए भी आले लगाने पड़ते हैं, देखने के लिए आले लगाने पड़ते हैं। कभी बड़ी उम्र के लोगों को देखे शादी की तैयारियों में कहीं जा रहे हैं, चलो अम्मा आप भी चले, अच्छे कपड़े पहने। वो मेरी अम्मा पहले अपनी अनक ढूंढेंगी, ग्लासेस की तरह मस्कारा कैसे लगाए वो अम्मा, और वो फाउंडेशन कैसे लगाए बेटा, देखो ठीक है। ये खटकी हर चीज अपने ऊपर लेकर सोचे, हम सब हमेशा जवान नहीं रहेंगे। कभी आप अपनी माँ की कोई तस्वीर अगर आपके पास है तो उनके अंदर अपना रूप देखें, नानी है तो उसमें माँ का अगला वक्त देखें। हम में से हर एक हट रहा है। फिर एक वक्त आता है वो बड़ा घर जो 1000 गज का था वो छोटा होता है, कहते नहीं मेरे से ऊपर नहीं जाया जाता, मैं 1 महीना हो गया ऊपर नहीं गई, बस एक नीचे ठीक है। और इतने बड़े घर से निकाल कर हमको एक छोटी सी कब्र में डाल दिया जाएगा। हम सब घट रहे हैं। अकलमंद वो है जिसको रियलाइज करे, अपनी उम्र को पहचाने और उसके तकाजों को पहचाने। बस जब हम अपनी उम्र को घटाने की ख्वाहिशात में कभी बाल रंगते हैं, कभी चेहरे को कुछ करते हैं कुछ, नतीजा क्या होता है कि हम बाहर जवान लग रहे हैं, अंदर कमजोरियां आई हुई हैं। फिर बहुत खिदमत ना करे, कहते हैं आज की बच्चियों को तमीज ही नहीं, पहले आप खुद उसकी सहेली बनी, बाद में उसने जरा बेतकल्फी में कुछ कह दिया, आप कहते जी इज्जत नहीं करती, खिदमत नहीं कर, वो कैसे करें, आप तो उनको अपने से भी यंग दिख रही हैं। शादी बेटे की बाल अपने कटवा लिए कि अब मैं उम्र की जरा छोटी लगूं, दादी बन गए तो तौबा करें और ही ना मुश्किल में आ जाए। तो रियलाइज कीजिए जिंदगी का हुसन आपकी उम्र के साथ है। बच्चा बड़े वाली बात करे तो अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा अगर बच्चों वाली बात करे तो अच्छा नहीं लगता। इस तरह जवान बूढ़ा बन जाए, जवानी में आपको शौक ही कोई नहीं और आप मुर्दा बैठे हैं तो भी कोई खुशी की बात नहीं। और इसी तरह से हर दौर में दिल खुश रखें अपना, लेकिन अपने उम्र के तकाजे रखें। लेकिन ये सच कि हम सब का इस दुनिया में अब वक्त कम हो रहा है, और अल्लाह ताला हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वलैम मस्सत हम नफ़त मिन अज़ाब रब्बिक, और अगर तेरे रब का अजाब जरा सा छू जाए इनको तो भी ये चीख उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खताकार थे, क़यामत के रोज हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे। फिर किसी शख्स पर जरा जुल्म न होगा, जिसका राई के दाने बराबर भी या कुछ होगा वो हम सब सामने ले आएंगे, और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। हाईलाइट करें, खौफ आता है ऐसी आयतों को पढ़ते हुए। वनदौल मवाजीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया वइन काना मिसक़ाला हब्बतिन मिन खर्दल अतैना बिहा। अतैना बिहा बड़ा खौफनाक है, सब कुछ खोल कर सामने ले आएंगे। सख्त मामला है हर चीजें। अल्लाह ताला छोटी बड़ी नेकी, दिल के इरादे, ख्वाहिशें, बातें, सब कुछ लाकर अल्लाह पेश करेंगे। वह कफा बिना हासिबीन, हम हिसाब लगाने के लिए काफी है। अल्लाह हमें अपनी अंदर की क्लीनिंग करने की तौफीक दे, जुबान की, दिल की, आंखों की चोरियों से अल्लाह बचा, क़यामत के दिन हम कहीं शर्मसार ना होने लगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान और रोशनी और जिक्र अता कर चुके हैं, इन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए जो बिन देख अपने रब से डरे और जिनको हिसाब की इस घड़ी का खटका लगा हो। और अब ये बाबरकत जिक्र है, हाईलाइट कीजिएगा, वहाज जिक्र मुबारक अफान तुम लहू मन की रोन। अब ये बाबरकत जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकार करते हो? जवाब दीजिए, क्या आपको मुझे इस किताब की बरकतें अपनी जिंदगी में महसूस हो रही हैं? आप में से जो फर्स्ट टाइम इस साल दौरे कुरान सुन रहे हैं, क्या वो इस बात की गवाही देंगे? पहले जब दौरे कुरान नहीं सुनती थी तो इस वक्त सो रही होती थी, रिलैक्स्ड होती थी, लेकिन जिस्म में थकन, तकलीफ, क्या आज आप इस पारे को सुनने के बाद बाकी दिन अपने अंदर एनर्जी नहीं पाते? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन गवाही देता है इसकी? अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये एनर्जी हमारी जिंदगी भर की एनर्जी बन जाए, फिर देखिए बरकतें। हकीकत है ये किताब बरकतों वाली है, जहां रखी वहां बरकत होगी। जिस शहर में उतरी वो मक्का बन गया, जो नबी इसको लेकर आया वो जिब्रील अमीन कहलाया, जिस हाथ ने इस किताब को थामा ने उसको बरकतें दे दी। आज भी ये किताब बरकतों वाली किताब है। आज उम्मत मुस्लिमा ने इसकी बरकतें खुद समेटी हुई हैं। आज आप दूसरी चीज़ों को बढ़ाने की बजाय कुरान को बढ़ा दें, उम्मत मुस्लिमा की बरकत पूरी दुनिया में फैल जाएगी और अल्लाह ताला हमें इसका जरिया बना दे।